चलते।
जब हम प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, पक्षियों का कलरव, नदियों का झरना, कई पंछी आकाश में उड़ना, रंग बिरंगे फूलों का खिलना, ये सभी साक्षी है परमात्मा के, क्योंकि कोई भी चीज परमात्मा के बिना नहीं चलती। जब हम साक्ष्यों को देखते हैं तो अनायास ही प्रश्न मन में उठता है कि ये प्रकृति, ये सौंदर्य जो सारा बिखरा हुआ है, ये परमात्मा की देन है, मतलब परमात्मा सर्वव्यापक है। भाई जी, हम आपसे जानना चाहते हैं इस अवधारणा के बारे में आप क्या कहेंगे?
प्रायः यही मान्यता है कि परमात्मा असीम है, बेहद है, अनलिमिटेड है, और इसलिए वो यत्र तत्र सर्वत्र है। उनको सीमा में लाना, ये परमात्मा परम आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो अस्तित्व है, उसके विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि एक असीम चीज को, अनलिमिटेड अस्तित्व को आप सीमा में ला रहे हैं, ऐसा माना जाता है। अब प्रश्न ये है, जो आपने उदाहरण दिया प्रकृति का, प्रकृति भी कही आपने और पंछी आदि भी कहे। विश्व में दो वस्तुएं होती हैं, दो चीजों से चलता है, एक है प्रकृति और एक है जिसको हम कहते हैं पुरुष, और इनको चलाने वाला, गाइड करने वाला परमेश्वर। प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब प्रकृति नहीं थी। आत्माएं भी अनादि अविनाशी हैं, ना नई बनाई जा सकती है, ना पुरानी समाप्त होती हैं, और परमात्मा तो है ही शाश्वत सदाशिव। ये तीनों एटर्नल, शाश्वत, अनादि, अविनाशी एंटिटीज का इंटरप्ले है, ये खेल है, सृष्टि नाटक, और ये अनादि ही चलता रहता है। अब प्रश्न है कि इसमें परमात्मा और प्रकृति को अगर हम लें तो प्रकृति जड़ है, परमात्मा चैतन्य है। अब दुनिया के अंदर हम जड़ और चैतन्य की डिस्टिंक्शन को तो समझते हैं कि जो बेजान चीज है, मोटे शब्दों में कहें, जिसमें जान नहीं है, इसके अंदर भी महीनता है कि क्या पौधों में जान है या नहीं, उसको हम छोड़ दें। जो चीज सोच समझ सकती है, अपना डरती है, अगर उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, उसमें भय का मादा है, थोड़ी बहुत जजमेंट कर सकती है, वो चैतन्य है, और जो बिल्कुल बेजान है वो जड़ है। उदाहरण के तौर पे जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, ये जड़ है, इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। और क्लियर एग्जांपल लेना हो तो हम डेड बॉडी का ले सकते हैं कि जब जीव आत्मा है, इस वक्त हमारे शरीर में आत्मा मौजूद है, तो मैं चेतन हूं, मैं लाइव हूं, लिविंग हूं। जब मेरी आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो ये शरीर जड़ हो जाएगा, ना चल सकेगा, ना फिर सकेगा। ये पांच तत्वों का बना हुआ पुतला है, और पांच तत्वों में वो शरीर बाद में फिनिश हो जाएगा, जल जल में मिल जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी में। तो ये डिस्टिंक्शन अगर हम लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, तो क्या परमात्मा जो चैतन्य है वो और प्रकृति जो जड़ है अलग नहीं हो गए? तीसरी जो सत्ता आत्मा है, वो भी चैतन्य है और वो भी अलग है। आत्माएं बहुवचन है, परमात्मा सिंगल है, लेकिन दोनों चैतन्य है। पर जो प्रकृति है, जिसका हमारा शरीर बना हुआ है, जिसके ये सारी आपने सुंदरता का वर्णन किया, झरने, फूल, पंछी आदि, पंछी तो खैर चैतन्य है, लेकिन बाकी सब चीजें जड़ है। भले ही पानी बहता है, लेकिन उसमें जान नहीं होती, वो फिजिकल लॉ से बहता है कि वाटर फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ऐसे तो हवाएं भी चलती हैं, लो प्रेशर होता है, बट वो प्राकृतिक नियम से चलते, उसमें जान नहीं होती, सोच समझ नहीं होती। इसलिए अगर हम ये कहें कि परमात्मा सबके अंदर व्यापक है तो प्रकृति जड़ नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे जब मृत्यु होती है तो शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो उसको मुर्दे को हम जड़ कहते हैं। अगर उसमें परमात्मा भी व्यापक होते और सदा ही व्यापक रहते, परमात्मा के निकलने का तो सवाल ही नहीं। सर्वव्यापक चीज कहीं से निकल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, वो तो ओमनी प्रेजेंट है, तो फिर वो मुर्दा भी चैतन्य होना चाहिए था। तो ये एक सीधा सीधा प्रमाण है कि नहीं, परम आत्मा परम है, और ये जो है अलग चीज है। दूसरी बात, प्रकृति रचना है। कहा जाता है कि आपने जो सौंदर्य वर्णन किया, तो एक गीत है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो रचना और रचेता दोनों अलग होते हैं। एक आर्टिस्ट बहुत अच्छी पोर्ट्रेट बनाता है या कोई पेंटिंग बनाता है, सब उसको देखकर वाह वाह करते हैं, जैसे ये मोना लिसा का पोर्ट्रेट प्रसिद्ध है। अब जिस आर्टिस्ट ने बनाई उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट का आर्ट उसके अंदर है, खुद आर्टिस्ट नहीं है। इस प्रकार से अगर परमात्मा की ये प्रकृति इतनी सौंदर्यपूर्ण रचना है, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग नियाग्रा फॉल देखने खास जाते हैं कनाडा और अमेरिका में, तो तारीफ करते हैं, लेकिन उसमें रचेता नहीं है, रचना की तारीफ की जाती है कि ऐसी शानदार रचना उसने रची। तो इसलिए ये कोई प्रमाण नहीं है ठोस के, क्योंकि परमात्मा बेहद हैं, तो ये सृष्टि भी इसको लिमिट में लाना बेहद की शक्ति को कम करना है। क्योंकि आज तो साइंस भी आप देखेंगे हर चीज को मिनिएचराइज करती जा रही है, छोटी से छोटी करती जा रही है, चाहे वो आप कंप्यूटर के चिप को ले लें, तो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि छोटे थोड़े से थोड़े में ज्यादा से ज्यादा भरा जा सके। और परमात्मा कहते हैं कि मेरी जो आत्मा मेरे संतान है, एक बिंदु रूप आत्मा में उसके सारे ही अनेक जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इससे ज्यादा वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या हो सकता है। क्योंकि साइंस फिर भी मनुष्यों की ही रचना है, इसलिए ना तो ये बात बैठती है कि परमात्मा को सर्वव्यापी होना चाहिए अपनी विशालता और अपनी शक्ति दिखाने के लिए। एक सूर्य, केवल एक सूर्य सारी धरती को प्रकाशित करता है, उसकी किरणें जाकर रोशनी को सर्वव्यापी कर देती हैं। जब तक कि कोई व्यक्ति सुरंग बना के, केव बना के उस रोशनी को रोक ना दे, तो अगर एक जगह रहता हुआ सूर्य सारे सृष्टि के जो फिजिकल लाइफ है, कहा जाता है कि जितना फिजिकल लाइफ है दुनिया में उसका संचार सूर्य करता है, इसी प्रकार से एक प्राइम मिनिस्टर एक जगह बैठकर राजधानी में सारे देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या परमपिता परमात्मा परलोक या परम धाम में रह करके इस रचना को नहीं चला सकता।
भाई, आपकी बात से एक बात तो स्पष्ट हुई है कि रचना और रचयिता ये दोनों ही विषय अलग अलग हैं। रचयिता की रचना है, लेकिन हम अब सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, और मैं कहूंगी शायद इसी डर से हम पाप कर्म करने से बचते हैं कि वो सर्वव्यापक है, हमें देख रहे हैं, शायद इससे हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म करने से डरते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं।
अब ये भी एक विचित्र विषय है कि परमात्मा से पहले भय किया जाए। हम कहते हैं परम प्रिय, परम पिता, परमात्मा, परमात्मा जो भय वाली वस्तु होती है या व्यक्ति होता है उससे तो लोग दूर भागते हैं, लेकिन इसके विपरीत सारे ही भगत परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हर आत्मा इस चीज की प्यासी है कि हम परमात्मा से मिलें। तो क्या परमात्मा भय का व्यक्तित्व है पैदा करने का, या स्नेह और वात्सल्य और प्रेम का प्रतीक है। परमात्मा को तो प्रेम का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं, भय का सागर तो नहीं कहते। पहली बात तो यह है कि परमात्मा के कैरेक्टरिस्ट, उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं, उसमें भय नाम की चीज ही नहीं है। बल्कि परमात्मा का ये महावाक्य है कि जो आत्मा भय से मुक्त होती है, कहा जाता है कि जो आत्मा करेजियस होती है, गॉड उसके साथ होता है, हिम्मतवान के साथ होता है। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मदद खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु आर करेजियस। तो वो भय की बात तो नहीं है, परंतु एक और बात इसमें आप देखेंगे कि भय से किसी चीज को कहां तक रोका जा सकता है। एक छोटा बच्चा, उसको मां कह देती है बच्चे सड़क पे नहीं जाना, हौवा आ जाएगा, तो छोटे बच्चे का हौवे का तो पता नहीं, वो डर जाता है कि भाई सड़क पे नहीं जाना क्योंकि वहां हौवा है। अच्छा, जब वो बड़ा हो जाता है, अब उसको थोड़ी समझ आती है, तो वो सोचता है कि हौवा तो है नहीं, एक दो बारी जाके देख भी आता है। अब उसको रोकने का तरीका क्या है कि बच्चे सड़क पर ट्रैफिक होता है, वहां एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, इसलिए तुम ना जाओ। तो सत्य क्या है, वो बात बताना या भय देना? तो भय से तो थोड़ा समय लोग डरते हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आज दुनिया में कितने पाप कर्म हो रहे हैं। अगर ये भय लागू होता कि परमात्मा देख रहा है मैं पाप ना करूं, तो पाप होते ही नहीं। आज तो लोग साफ बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, लाओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है। क्रूरल्टी करते हैं, महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, कहो अपने भगवान से तुम्हें बचा ले, तो उल्टा हो गया। इसलिए ये कोई पक्की चीज नहीं है कि परमात्मा के भय से लोग पाप ना करें। पाप करने के जब उनके संस्कार बन जाते हैं, तो जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ, भगवान जब अवतरित होते हैं उनके सामने भी लोग उनकी अवज्ञा करते रहते हैं, दुष्कर्म करते हैं।
पर अगर परमात्मा सर्वव्यापी ना होता तो हमें पॉजिटिव काम करने की या अच्छे कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती? कहते हैं ना, गॉड इज एवर वॉचिंग यू, इसलिए हमको कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी होती है। तो इस संबंध में
ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और उस सर्वव्यापी की मान्यता से हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, तो ये भी पार्टली सत्य है। क्योंकि अगर कोई आदमी किसी अच्छे को याद करता है, अपना मन अच्छे से लगाता है, तो उसको प्रेरणा तो मिलती है। जैसे फूल लगे हुए हैं, खुशबू आ रही है, तो हर व्यक्ति चाहेगा ये फूल मेरे पास हो, चाहे मैं अपने घर में लगाऊं, ये तो ठीक है। लेकिन परमपिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं के कर्मों के करने में इंटरफियर नहीं करते। परमात्मा हमें आजादी देते हैं, हर आत्मा स्वतंत्र है कि वो सृष्टि चक्र पर आती है, वो अच्छे कर्म भी कर सकती है, ना अच्छे भी कर सकती है, और वो स्वतंत्र है कर्म करने को, उसका फल उसको मिलता है। अगर हम ये माने कि हम अच्छे कर्म परमात्मा की प्रेरणा से करते हैं, तो फिर इसका फल किसको मिलना चाहिए? परमात्मा को, क्योंकि उसने प्रेरित किया है ना। अगर कहा जाते हैं तो लॉ में भी पढ़ाते हैं, एक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल और एक्ट्स ऑफ द एजेंट, कि जो व्यक्ति किसी की, अगर आजकल भी आप देखते हैं खबरें आती हैं, कोई जीव घात कर लेता है, सुइसाइड कर लेता है, तो जिस व्यक्ति ने उसको मजबूर किया होता है सुइसाइड करने पर, उसको भी ऑफेंस माना जाता है। तो ये तो हो नहीं सकता कि, और फिर दूसरी बात ये है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। अगर परमात्मा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते होते, तो दुनिया में कोई खराब कर्म कर ही नहीं सकता था। परमात्मा का ऑर्डर है, परमात्मा की प्रेरणा है, और उसको पहुंच रही है, तो वो व्यक्ति कैसे खराब कर्म करेगा? पर खराब कर्म भी हो रहे हैं, इसलिए परमात्मा हमको इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं।
एक ये भी तो तथ्य प्रचलित है भाई जी, कि कोई भी सूक्ष्म चीज स्थूल में समा जाती है। हाँ। मतलब, और परमात्मा तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, और इसीलिए वो हर जगह समाया हुआ है। और इसीलिए उसको सर्वव्यापकता के निशाने भी कह देते हैं।
नहीं देखिए कि ये तो फैक्ट है कि स्थूल में सूक्ष्म समा सकता है, सूक्ष्म में स्थूल नहीं समा सकता। ये जो पांच तत्व हम बताते हैं, पृथ्वी सबसे स्थूल है, फिर जल उससे सूक्ष्म है, फिर अग्नि उससे सूक्ष्म है, फिर वायु जो अग्नि को भी हिला सकती है उससे सूक्ष्म है, आकाश सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। ये तो फिजिकल है, ये जड़ है। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा है। अब आप देखिए हमारे अंदर जो जीव आत्मा, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये दर्शक हैं, उनके अंदर भी आत्मा समाई हुई है। चला कौन रहा है शरीर को? शरीर स्थूल है, तत्वों का बना हुआ है, आंखें तत्वों की बनी हुई हैं, तो आंखों को देखने की शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? आंखें देखने का यंत्र है, क्या देखना है क्या नहीं देखना आत्मा कर रही है। आंखें नहीं देखती, आंखों के द्वारा आत्मा देखती है, और जैसी आत्मा होती वैसे ही देखती है। कोई अच्छी दृष्टि से देखता है, कोई खराब दृष्टि से देखता है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। ये तो ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है एक व्यक्ति का दूसरे में, पर उसके द्वारा अच्छा या बुरा क्या देखा जाएगा वो तो आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। तो जब हमारे अंदर आत्मा है, क्या हमारे शरीर में आत्मा सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है? सोचने की बात यह है कि मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा सर्वव्यापी है, नहीं, क्योंकि पहले हम बच्चा थे, हमारा शरीर छोटा था, तब भी आत्मा थी। अब हम फुल ग्रोन हो गए हैं, तब भी हमारे अंदर आत्मा है। अगर अनफॉर्चुनेटली हमारा बाजू कट जाए तो हम क्या कहेंगे कि आत्मा कट गई? नहीं, शरीर का अंग कटा। इसलिए सूक्ष्म स्थूल में व्यापक हो भी तो भी सर्वव्यापक नहीं कही जा सकती। और परमात्मा का अगर सर्वव्यापक होते सूक्ष्म तो सारी प्रकृति चैतन्य हो जाती। हमने आपको पहले भी बताया कि जो चीज जहां व्याप होती है वो अपने आप को प्रकट करती है। परमात्मा चैतन्य है, आत्मा के लिए भी कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा भी सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, चैतन्य सत्ता है, क्योंकि परमात्मा से लोग बुद्धि मांगते हैं। परमात्मा ज्ञान के सागर है, तो ज्ञान तो चैतन्य सत्ता में ही होगा। अगर परमात्मा सूक्ष्म है, जैसे हमारी आत्मा सूक्ष्म है, शरीर में व्यापक है, तो शरीर को चलाती हलाती सोच समझ कराती है ना, ऐसे ही परमात्मा अगर सब जगह व्यापक होते, सूक्ष्म होते हुए भी, तो सृष्टि चैतन्य होती। और फिर परमात्मा व्यापक है तो सृष्टि के लक्षण कैसे होते, स्वर्ग जैसे होते?
प्रायः लोग ये भी कहते हैं, ये एक सर्वविदित तथ्य है, परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है, हमें देखता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में ये पुरजोर विश्वास और शक्ति के साथ कहा जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ऐसा क्यों?
अब देखिए, जो भी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, हम भी इसी समाज के अंग हैं। पहले हम सब भी यही परंपरागत मान्यता पे चलते थे। एक ओर हम परमात्मा की भक्ति करते थे, दूसरी ओर हम कहते थे परमात्मा सब जगह है। मुझे याद है कि एक भगत, एक बचपन में हमने एक गीत सुना था, भजन, और वो भजन परमात्मा भक्ति करने वाले के परमात्मा को अनुभव जब उसने किया तो परमात्मा को सर्वव्यापी ना होने का उसको कैसे एक क्वेश्चन पैदा हुआ। तो उसने, मुझे कुछ याद है, उसने कहा, अजब हैरान हूं भगवान, वो पूजा कर रहा है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। पूजा में तो लोग परमात्मा के लिए कई कुछ करते हैं, नहीं वस्तु कोई ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। क्या कह रहा है वो? करूं मैं कैसे आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जा, हर जगह सब व्यापक हो, क्वेश्चन है उसका। करूं मैं कैसे आवाहन, जो चीज सब जगह मौजूद है उसका मैं आवाहन कैसे करूं? भगवान दर्शन दो। निरादर है बुलाने का अगर घंटी बजाऊं मैं। अब कहते घंटी बजाते हैं कि नहीं, किस लिए बजा रहे हैं, सब जगह है। फिर और ज्यादा देखिए, तुम्ही हो मूर्ति में भी, तुम्ही व्यापक हो फूलों में। मैं फूल लेके गया है, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, अब ये सोचने की बात है। इसलिए ऐसे लंबा था वो गीत, कहने का भाव ये है कि बहुत बड़ी जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन है। हम लोग जो कर रहे हैं, अगर परमात्मा सब व्यापक होते हैं तो भगत और भगवान में डिस्टिंक्शन ही नहीं रहती। कौन भगत बनता, वो तो सर्वव्यापक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापक होते तो योगी योग किससे लगाता, उसमें भी भगवान है। इसी प्रकार से अगर परमात्मा सर्वव्यापक होते तो मुक्ति कौन मांगता, परमात्मा तो सदा मुक्त है, लिबरेट करो। अगर परमात्मा सर्वव्यापक होते तो धर्म ग्लानी हो सकती थी। गीता में भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब मैं अवतरित होके अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करता हूं। अगर परमात्मा सर्वव्यापक होते तो सत्य धर्म चला ही आता, ना उसकी ग्लानी होने की संभावना है, ना उसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, सदा ही सतयुग रहता, स्वर्ग रहता। तो ऐसा तो नहीं है। अगर परमात्मा सर्वव्यापक होते तो सतो रजो तमो त्रिगुणों में भी माया नहीं आती, क्योंकि सदा सतोगुणी रहती। तो आप देखेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापक है ही नहीं। वरना क्या होता, मूर्ख विद्वान में भी फर्क नहीं रहता, उसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। फिर तो कोई ना कोई दोषी होता, ना कोई पाप कर ही नहीं सकता था व्यक्ति, तो एक स्टैटिक अवस्था रहती। लेकिन ऐसा तो है नहीं। इस सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग आता है। अब परमात्मा कहते हैं कि कलयुग से सतयुग कौन लाता है। सतयुग से कलयुग आना तो सब जानते हैं कि धीरे धीरे कलाएं कम होती है, नई चीज पुरानी हो गई। लेकिन चक्र क्रम में कलयुग कहां, सतयुग कहां, वो पतित दुनिया, वो पावन दुनिया, वो आसुरी संस्कारों वाले मनुष्य, वो दैवी संस्कारों वाले देवता, जिनकी के पूजा मूर्तियों तक के मंदिर में होती है, वो कैसे बदल गए। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं गीता के, देखिए मैंने वचन दिया हुआ है कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा ही इस दुनिया को चेंज करूंगा। अब वो सर्वव्यापी की तो बात बैठती नहीं। अब हाँ ये बात है कि दो बातें हैं। एक तो ये कि सर्वव्यापी परमात्मा अगर नहीं है, और सब बातें इसी ओर संकेत करती हैं कि नहीं है, तो फिर परमात्मा को सर्वव्यापी कैसे कह दिया गया, एक तो ये प्रश्न है। अगर नहीं है, आखिर सब लोग जानते हैं ये पैगंबर पैगाम लाए, सब मानते हैं कि महापुरुष पैगाम लाए, महात्मा हुए, सब लोग मानते हैं कि दुख और सुख है, परमात्मा दुख नहीं देता सुख देता है। सब लोग मानते हैं कि अगर परमात्मा सर्वव्यापक होगा तो दुख सुख में नहीं आएगा, फिर भी सर्वव्यापी कैसे कह दिया गया, तो ये एक लंबा विषय है। वास्तव में जब समय अच्छा था, लोगों के पास समय था, जीवन का संघर्ष इतना नहीं था, कोई आर्थिक समस्याएं नहीं थी, राजाओं का राज था, तो जैसे आजकल साइंस वगैरह, मेडिसिन वगैरह वाले या विनाशकारी शस्त्रों वाले रिसर्च करवाते हैं, रिसर्च एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इसी प्रकार से उस समय राजाओं ने रिसर्च करवाई कि आखिर परमात्मा कहाँ है, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो हर एक के अंदर शुरू से है, परमात्मा कहाँ है। और जब खास तौर पे देवताओं का युग पूरा हो गया, देवताओं तो सुख की दुनिया थी, तो सुख में सिमरन कोई करता नहीं, दुख में सिमरन करते हैं। जब दुख शुरू हुआ उस समय मनुष्यों ने, भारतवासियों ने सोचा हमारा सुख कहाँ गया, तो फिर परमात्मा की खोज में लगे। तो उस वक्त फंडिंग की, बड़े बड़े महाराजाओं ने, जाओ बड़े बड़े जो थे वहां के ऋषि मुनि रिसर्च करो, और ऋषि मुनियों ने खूब रिसर्च करी और बाय द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन कि ये भी नहीं ये भी नहीं, हर चीज को उन्होंने देखा कि इसमें परमात्मा वाले एट्रीब्यूट्स हैं नहीं है नहीं है। तो नेति नेति करते करते आखिर उन्होंने देखा कि किसी भी चीज में पर जो उन्होंने कंसीव की परमात्मा के गुण नहीं है, ये परमात्मा नहीं हो सकते। तो आखिर उन्होंने कह दिया कि परमात्मा को जानना, उनको पाना समझना मनुष्य की बुद्धि से बाहर है। परमात्मा बेअंत है, बियॉन्ड ह्यूमन कंसेप्शन है। और आज भी सिख धर्म वाले उनकी जो प्रार्थना है उसमें साफ स्पष्ट रूप से कहते हैं किसे ना पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, तुमरी गतमत तुम ही जाने। तो परमात्मा की गति मति अर्थात उनकी सदगति करने की जो मत है वो वही जानते हैं। और इसका एक और प्रमाण है कि अगर परमात्मा के सिवाय कोई जानता होता तो फिर गीता के भगवान को अवतरित होकर अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। तो जब ये चला तो लोगों ने कह दिया बेअंत है, फिर भी लोग बुद्धि चली कहाँ है, अब किसको बताएं जब कोई भी वस्तु परमात्मा के कैरेक्टरिस्टिक की नहीं बताती। तो जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा था कि सूक्ष्म चीज स्थूल में समा जाती है, तो उन्होंने सोचा परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और प्रकृति को भी वो चलाता है, सूर्य को भी वो सर्कुलेट करता है, जो सूर्य का ग्रह है सिस्टम सोलर सिस्टम है, पानी को भी वो बहाता है, जीवों को जन्म भी वो देता है, मृत्यु भी वही प्रदान करता है। इस प्रकार से उन्होंने बना लिया कि अवश्य ही परमात्मा अदृश्य होगा, अति सूक्ष्म होगा और सब जगह होगा। तो ये मान्यता चल पड़ी भगवान सब जगह है। तो परंतु हम जानते हैं कि प्रकृति फिजिकल लॉस से चलती है, हर एक को पता है आज साइंस के जमाने में। मनुष्य आत्मा भी कर्मों की गति के अनुसार ऑटोमेटिकली उन कर्मों का फल मिलता है। यूं भी ऑटोमेशन आज कितनी जगह हो रही है, हर काम में ऑटोमेशन हो रही है। तो परमपिता परमात्मा जो परफेक्ट क्रिएटर है उसने कोई मैनुअल सिस्टम तो रखा नहीं होगा दुनिया चलाने का, तो सारी स्वचलित है। ऑटोमेटिकली सतयुग से गिरावट आती है, त्रेता आता है, केवल एक पॉइंट पर जब बिल्कुल अति धर्म ग्लानी हो जाती है उसमें भी उसी नियम के अनुसार परमात्मा ने दुनिया की स्थापना की। अब आपका दूसरा हिस्सा ये था, आप कैसे कहते हैं ब्रह्मा कुमारी कैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है जबकि सारी दुनिया कहती है। तो हम किसी के साथ ये नहीं कि कोई वाद विवाद करके या ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कोई सुपीरियर है इस ख्याल से कहते हैं, परंतु ये स्वयं गीता के भगवान की रिविलेशन है। जैसे पिछले साइकिल में भी धर्म ग्लानी हो गई थी तो गीता के भगवान ने अवतरित होकर अपना सत्य परिचय दिया था, अब फिर वही धर्म ग्लानी का समय है और गीता के भगवान निराकार शिव वो ब्रह्मा जी के द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां उनकी मुख वंशावली सुनते हैं, उसमें ही परमात्मा ने बताया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं निराकार हूं, मैं शिव हूं। और शिव के जो भारत के अंदर यादगार मंदिर हैं तो परमात्मा संकेत करते हैं शिव वास्तव में ज्योतिर्लिंगम के आकार की प्रतिमा है जिसको शिवलिंग कहते हैं। इसको भिन्न भिन्न नामों से भारत के अंदर मंदिर हैं और ये ज्योतिर्लिंगम जो है इसकी पूजा आज भी भारतवासी परमात्मा ने नमः कह के करते हैं, ये परमात्मा है। और शिव ने ब्रह्मा जी के द्वारा गीता सुनाई, इसकी भी एक कथा भारत में प्रचलित है कि शिव की जटा से गंगा निकली थी जिसको भागीरथ शंख बजाते हुए भारत में लाए थे, परंतु इस कथा का रहस्य आज गुम है कि भागीरथ वही ब्रह्मा का भाग्यशाली शरीर रूपी रथ था जिसमें परमात्मा को ज्ञान को धारण करके, गंगा कोई पानी की गंगा तो है नहीं, उस ज्ञान को धारण करके मुख अरविंद द्वारा जिसको शंख बजाने के ये भारतवासियों को सुनाया था। और उसका प्रसार जो है वो परमात्मा ने शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा कराया था, जो आज हो रहा है और जिसके यादगार में ये नदियां चलती हैं। ये सारी कहानी है पूरी, तो ये रिवील्ड नॉलेज है और हम समझते हैं हर एक भारतवासी को ये पता लगनी चाहिए ताकि परमात्मा से योग लगा सके। इसके लिए तो हमारे सेवा केंद्र पर आएंगे तभी उनको डिटेल में परिचय मिलेगा और अपना वो क्वेश्चन करके क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं।
आपने हमारे कुछ जो अनसुलझे प्रश्न थे उनको बहुत ही सुलझाकर हमें रचना, रचयिता और परमात्मा का परिचय आज यहाँ पर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति।
परमात्मा कौन है, हम उन्हें कैसे पा सकते हैं, परमात्मा की राह पर हम कैसे चल सकते हैं, ऐसे कई प्रश्न अगर आपके मन में भी उठ रहे हैं तो आप सभी से हम कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्र पर हम जाएं और परमात्मा का सही परिचय प्राप्त कर ज्ञात और परमात्मा के स्नेह के पात्र बने। ओम शांति।